करना है या
जवाब
नहीं सुन रहे क्लास 22 मई 1980 शिव भगवान हुआ अपने शालिग्रामों के शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर हो क्योंकि शरीर होगा तो उपवास होगा उपवास माने बोलना वाच के लिए मुख जरूर चाहिए तो जरूर सुनने वाले को भी कान चाहिए सुनने वाले हैं शालिग्राम रूपी आत्माएं उनको भी अपना शरीर है और सुनाने वाले शिव भगवान को भी अपना शरीर तो नहीं है परंतु इस दुनिया में आकर के शरीर लेना पड़ता है तो मुख जरूर चाहिए आपको अभी तो बच्चों की ईश्वरीय मत मिल रही है इस ईश्वरीय मत को राम मत कहा जाता है क्यों ये क्यों नहीं कहा कि कृष्ण मत कहा जाता है कृष्ण के आखिरी चोले के द्वारा मुरली सुनाई कृष्ण के आखिरी जन्म के चोले के द्वारा मुरली सुनाई या राम वाली आत्मा के आखिरी जन्म के चोले से मुरली सुनाई मुरली किसके तन से सुनाई कृष्ण वाली आत्मा उसके अंतिम 84वें जन्म में उस तन में प्रवेश करके मुरली सुनाई फिर कृष्ण मत कहा जाना चाहिए राम मत क्यों कह दिया मुरली अच्छा शिव मत कह देते शिव मत भी नहीं कहा क्योंकि उपवास का सवाल है उपवास तो मुख से ही किया जाएगा शिव को अपना मुख होता नहीं है किसकी मत कही जाए राम मत तो नहीं कहना चाहिए बाबा ने लिया राम मत क्यों कह दिया इसलिए कह दिया कि कृष्ण वाली आत्मा के अंतिम 84वें जन्म के शरीर से मुख से बोला तो लेकिन जो बोला हुआ है उसका रहस्य किसी की समझ में नहीं आया क्यों क्यों नहीं आया क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ने अपने अंतिम चोले में मुरली सुन तो ली कानों से पहले पहले कानों से कौन सुनता है ब्रह्मा की सुन और दूसरों को सुनाई भी जो सुना दूसरों को सुनाया भी लेकिन उस पर अकल मत नहीं चली अपनी मत कोई टिप्पणी नहीं दे पाए क्या राइट है क्या रंग है या नहीं है कैसे होना चाहिए इसका अर्थ क्या हुआ गहराई में कभी उनकी बुद्धि गई नहीं माने जो भी आया ज्ञान शिव से उस शिव के ज्ञान को उन्होंने आलोड़न नहीं किया मनन चिंतन मंथन नहीं किया वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते थे कि मम्मा ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते थे मम्मा फिर भी मनन चिंतन मंथन करते थे तो कृष्ण के द्वारा मत माने बुद्धि मत माने अकल लड़ाई नहीं इसलिए कृष्ण की मत नहीं कही जा सकती इसकी मत कही जाए वही मुरली राम वाली आत्मा के द्वारा जब आलोड़ित होती है मंथन होती है तो उसमें से सार निकलता है दूध है, दूध को मिलाएंगे, मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा, रस निकलेगा, साग निकलेगा। इसलिए राम मत गाई हुई है, कृष्ण मत गाई हुई नहीं है। तो एक है राम मत, उसके मुकाबले फिर दूसरी है रावण मत। क्या राम मत के अपोजिट में रावण मत? क्यों राम मत के अपोजिट में कृष्ण मत कह देते, रावण मत क्यों कहा? जो ब्रह्मा को आरोप करने वाली ब्रह्मा कुमारियां जो सुनाने लगी वो भी तो अपोजिट है। तो उसे रावण मत कह देते, सो नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि रावण को तो कितने सिर होते हैं, अनेक सिर होते हैं, और ब्रह्मा के मुख से जो मुरली निकली वो तो एक ही मुरली है। तो दूसरे तरीके से दो दो तरह की वाणियां तो उन्होंने चलाई नहीं। अच्छा, गुलजार दादी के कहने में प्रवेश करते हैं तो भी कोई महावाक्य ऐसा तो आया नहीं जो मुरली को काटने वाला हो? आया कोई नहीं। मैंने मुरली तो उनके मुख से एक ही निकली, लेकिन उनके मुख से जो मुरली निकली है उस मुरली को दूसरे दूसरे लोगों ने 10 तरीके से उसकी व्याख्या करी। जो आया तो उसने अपनी अपनी अकल चला करके अपना उसका अर्थ लगा दिया। तो अलग अलग प्रकार की मतें हो जाती हैं, वो अलग अलग प्रकार की मतें ही रावण मत कही जाती है। तो ईश्वरीय मत और आसुरी मत, ईश्वरीय मत आधा करते हैं। कौन कौन सी बोल? सती वत्रेता में आधा कल्प चलती है ईश्वर की मत, रावण की मत भी आधा कल्प चलती है। कौन कौन सी युगों में? द्वापर और कलयुग द्वैतवादी युगों में रावण की मत चलती है। अगर मनुष्य मत कहे वो भी तो आसुरी मत हो गई। क्यों? मनुष्य मत को आसुरी मत क्यों कहे? मन जो है चलायमान है और मन के आधार पर बनता है मनुष्य। जिसका मन चलायमान है उसे कहा जाता है मनुष्य। भगवान शिव जब ऊपर से आते हैं तो जानवर में प्रवेश करते हैं, कीड़े मकोड़े में प्रवेश करते हैं, देवता में प्रवेश करते हैं या मनुष्य में प्रवेश करते हैं? मनुष्य तन में तो प्रवेश करते हैं, लेकिन जो मनुष्य को जब भगवान की मत मिलती है तो उसका नाम बदल जाता है, क्या नाम हो जाता है? धर्म वाली आत्मा का अंतिम जन्म की चुनी का नाम क्या हो जाता है? शंकर। नाम शंकर हो जाता है ना, तो शंकर में शिव प्रवेश करता है। और शंकर किस पर सवारी करता है? माने ब्रह्मा ने जो कुछ बोला उस ब्रह्मा की बोली हुई बात को अपनी बुद्धि से मनन चिंतन मंथन करके अपने तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर दिया। क्या कहती है? मुरली तो हमारी है, हमारी मुरली को वो क्यों सुनाता है? अरे मुरली तो भगवान की है, न हमारी है और न तुम्हारी है। लेकिन मुरली का रहस्य क्या है, उस रहस्य को जानने की बात है ना। तो रहस्य को कोई झूठा आदमी होगा तो झूठे तरीके से बताएगा, और सच्चा आदमी होगा तो सच्चे तरीके से बताएगा। तो दो मतें हो गई, आसुरी मत और ईश्वरीय मत। दैवी मत हुई ईश्वरीय मत, उनको राम संप्रदाय और इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। बाप दैवी मत देकर के देवता बनाती है। आधा आधा तो है राम मत सती मत देवता, रावण मत द्वापर कलयुग। जन्म भी थोड़े होते हैं, कब? राम मत में जन्म थोड़े, कितने? 21 जन्म, और रावण मत में जन्म 63 जन्म हो जाते हैं। योगियों के जन्म कम होते हैं, आयु लंबी होती है, और भोगियों के जन्म ज्यादा हो जाते हैं और आयु कम हो जाती है। श्रृंगों की है रावण में जन्म भी बहुत लेते हैं ना, क्योंकि भोग ही लोग हैं इसलिए आय भी कम होती है और संप्रदाय भी बहुत हो जाते हैं। तो टोटल मिलकर के आसुरी संप्रदाय, लेकिन एक संप्रदाय के नहीं है, कितने संप्रदाय हो जाते हैं। इस्लामी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, क्रिश्चियन संप्रदाय, ढाजार में जितनी डालियां हैं दाई और बाई और फैली हुई वो सारे ही अनेक प्रकार की मतें हो जाती है। बहुत दुखी होते हैं लड़ते लड़ते आपस में, राम मत वाले भी फिर रावण मत से मिल जाते हैं। अरे अब जो राम मत वाले थे सत्य त्रेता में, वो द्वापर कलयुग में आकर के किससे मिल जाते हैं? रावण से मिल जाते हैं। सब मिल जाते हैं या कोई कोई रह जाते होंगे, आखिरी जन्म तक टक्कर लेते रहते होंगे। राम मत वाले सभी मिल जाते हैं कि कोई कोई टक्कर लेते रहते हैं? शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे कोई तो होते होंगे जो आखिरी जन्म तक भी टक्कर लेते रहते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंत में माया किसी को छोड़ती है, फिर बात आकर सभी को राम मत देती है। अब राम मत बाप ने आकर पहले पहले कब दी? अरे 68 में दी, 76 में दी या कब दी? उससे पहले नहीं दी। हाँ नहीं यज्ञ के आज में राम वाली आत्मा के द्वारा ब्रह्मा बाबा को उनके साक्षात्कारों का भी नहीं बताया, राम वाली आत्मा के द्वारा ही तो बताया ना, तो बताया। फिर बाप आकर अंत में सभी को राम मत देते, सत्यगुरु ने राम की मत ईश्वरीय मत कहा जाता है, क्योंकि सत्य मत है ना, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। आदम ईश्वर ही सत्य है ना, तो सत्य बाप आकर काई की कौन सी की स्थापना करते हैं? सत्य की स्थापना करते हैं। ईश्वरी मत मिलने से स्थापना तो स्वर्ग की हो जाती है आदम की, परंतु जब वो पूरी हो जाती है तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है आदम। तो अभी अपन से पूछो कि हम आसुरी मत से क्या करते थे और अभी हम ईश्वरी मत से क्या कर रहे हैं? क्या करते थे? आसुरी मत से हम भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा अंधविश्वास के काम करते हैं, अब ईश्वरी मत हमको मिलती है तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हमारा खत्म हो जाता है। आगे तो जैसे कि तुम वैश्यालय में थे रावण की मत पर चलने से, अर्थात नरकवासी थे, अभी तुम एक बाप की मत पर चलने से स्वर्गवासी बनते हो, शिवालय में जाते हो। शिवालय यादगार है, क्या यादगार है? शिवालय और वैश्यालय का फर्क क्या है? शिवालय में एक शिवलिंग बीच में रखा है, चारों तरफ सभी देवताएं बैठे हुए होते हैं और सब देवताएं किसकी पूजा चिरौरी करते हैं? एक शिव की, उसको कहा जाता है शिवालय, जहां एक शिव की पूजा करते हैं, एक शिव की मान्यता करते हैं, एक शिव को याद करते हैं। और वैश्याने किसे कहा जाता है? आलय माने घर, वैश्या का आलय, वैश्या का घर, वहां क्या होता है? जो भी आने वाले हैं उन सब की पूजा वैश्या को करनी है। तो कहां अनेकों की पूजा करना और कहां एक की पूजा करना, अंतर होता है कि नहीं? क्या अंतर होता है? वो है विविचारी घर और वो है अविविचारी आने। सत्य उत्तरीता को कहा जाता है शिवालय, जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी होगा। जिसके नाम से स्थापना होती है। एक है रावण राज्य, एक है राम राज्य, तो राम राज्य की स्थापना किस नाम से होती है? नाम किस आधार पर पड़ता है? कोई काम किया होता है तो उसके आधार पर नाम पड़ता है। तो जरूर राम ने जो स्थापना का कार्य किया नई दुनिया की, इसलिए उसका नाम पड़ता है राम राज्य। एक मत जनती है वहाँ, एक राजा होता है, एक धर्म होता है, एक मत होती है, एक कुल होता है, एक भाषा होती है, राम मत कहा जाता है। रचयिता राम बाप की, तुमको ये बातें अभी समझाए रही, इसकी बातें समझाए रही। रचयिता राम बाप को कहे या शिव को कहे? रचयिता राम बाप को कहा जाएगा। क्यों?
साकार,
क्योंकि साकार तो चाहिए नहीं दुनिया। क्या रचते हैं जो भी तुम समझते हो, सारी रचना इस समय राम को बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन शब्द बोलते हैं तो किसका नाम लेते हैं? पतित पावन सीताराम का नाम लेते हैं। लिबरेटर रावण के राज्य से छुड़ाने वाले, हे दुख से छुड़ाने वाले आ जाओ। अभी तुम बच्चों को सुख का मालूम था, तभी उसको तुम दुख समझते हो, नहीं तो कहीं तो इस दुनिया को दुख भी नहीं समझते। जैसे बाप नारिश को गए मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नारिश को बच्चे क्या? बीज में झाड़ की सारी नमी है, जैसे मनुष्य सृष्टि की झाड़ है, इसका बीज कौन है? राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। तो जरूर बीज ज्ञान का बीजारोपण भी कौन करे? वही यज्ञ के आदमी राम वाली आत्मा के द्वारा ही ज्ञान का बीजारोपण होता है, वही फिर संक्षिप्त से ज्ञान का विस्तार भी करती है। परंतु वो भी लोग बीज होते हैं जड़, और ये बीज है चैतन्य। कौन? राम वाली आत्मा। अगर वो जड़ बीज भी चैतन्य होता तो वो भी बताता, तुम चैतन्य झाड़ के बीज हो, इसलिए झाड़ को जानते हो, बाप को कहा जाता है मनुष्य शक्ति का बीज। कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को या मनुष्यों के बाप को? जो मनुष्यों का बाप है उसको कहा जाता है मनुष्य शक्ति का बीज। सत्ता चित्त आनंद तो है ना, वही एक सच्चा भी है, चैतन्य भी है, जड़ तुम्हारी बुद्धि नहीं बनती है, और आनंद तो वो सत्य है, और एक ही सत्य है। उस एक ही यादगार में अंतिम जन्म में अंतिम जन्म तक भी भक्ति मार्ग में किसकी कथा गाई जाती है? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। तो वो चैतन्य झाड़ है मनुष्य शक्ति का, और ये जड़ झाड़ होते हैं। इस झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश कैसे होता है ये कोई नहीं जानता। ऐसे नहीं नया झाड़ स्थापन होता है, नहीं, वो कोई जानते नहीं है ये कि झाड़ कैसे पुराने से नया बनता है। ऐसे भी नहीं है कि नया झाड़ स्थापन हो जाता है, ये भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मुझे बुलाते हैं कि आकर के हमको रावण राज्य से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है बहुत दुख देता है मनुष्य को। मनुष्य तो कोई भी डिटेल को नहीं जानता, न समझा सकते। मनुष्य तो न रचयिता को जानते न रचना को जानते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। बाप खुद आकर के बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार आकर के शक्ति पर स्वर्ग बनाता हूं, बार बार नहीं बनाते, एक कल्प में एक ही बार आकर सृष्टि दुनिया को स्वर्ग बनाता हूं, स्वर्ग के बाद फिर नारद अपने आप बन जाता है, रावण के आने से वाम मार्ग में चले जाते हैं, वाम मार्ग माने काम उल्टा हाथ माने उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, उनके कर्म करने लग पड़ते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहिए व्यभिचार के वही व्यभिचारी कर्म करने लग पड़ते हैं। राम राज्य और रावण राज्य का अर्थ भी तुम समझते हो, राम राज्य का अर्थ क्या है, एक राजा का राज्य, रावण राज्य का अर्थ आज एक मंत्री का राज्य चलता है कि अनेकों मंत्रियों का राज्य चलता है, अनेकों का राज्य चलता है, एक एक बात कहेगा दूसरी दूसरी बात कहेगा, एक एक नियम बनाएगा दूसरा दूसरा नियम आकर के उसमें से पहले वाले नियम को पाठ करेगा, तो रावण राज्य का अर्थ भी तुम समझते हो, रावण राज्य है अपवित्र इसलिए आयु भी कम होती है, और राम के राज्य में है पवित्रता इसलिए वहां आयु भी बड़ी होती है, हेल्थ हैप्पीनेस सभी कुछ होता है, तुम यहां आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा है, क्योंकि स्वर्ग में कब दुख होता है तुम्हारे दिल में, हम कल्प ऐसे पुरुषोत्तम संगम पर यह पुरुषार्थ करते हैं, नाम ही देखो कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कर कहेंगे, क्यों सचिव नेता पुरुषोत्तम युग नहीं है, क्यों वहां पुरुषोत्तम राज्य नहीं करता है, हाँ सचिव में तो कृष्ण वाली आत्मा पहले जन्म में राज्य करती है, उससे उत्तम कोई नहीं है क्या, कृष्ण को भी जन्म देने वाला भी तो कोई बाप उससे उत्तम है या नहीं है, है तो सखी को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम युग से तो संगम युग है, बाप को बुलाते भी हैं स्मरण भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तो बुलाते बुलाते सीधे नीचे उतरते हैं, परंतु ये मालूम नहीं रहता है कि बाप कब आवेंगे और बाप कौन है, उपाध्य है वो गॉड फादर लिमिट करो माय गाइड बनो, अब लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना तो पड़ेगा ना, फिर गाइड बनकर ले जाना पड़ेगा, बच्चों को बहुत दिनों से देखते हैं, अच्छी नींद बच्चों को देख करके बड़ा खुश होते हैं, और सभी तो बच्चे एक जैसे नहीं, वो दुनिया में तो होते हैं हद के पास, तो भी हद का बाप है, बाबा ने समझाया है पुरुष क्रिएटर भी है, पुरुष रचना रचता है बच्चों की, फिर पालना भी करता है, और सभी आत्मा रूपी बच्चों को पुनर्जन्म देना नहीं पड़ता है, कोई बाप को 10 बच्चे होते हैं, कोई 12 बच्चे होते हैं, परंतु वो तो बाप हद का सुख देती है, उस सुख को हम कहेंगे काल निष्ठा समझ, और ये बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं, इसे बेहद के सुख को कोई काल निष्ठा समझ सुख तो नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे कि बाप आकर जो सुख देते हैं वो सुख भोगते भोगते रावण राज्य में आते आते तमो प्रधान बन जाते, बिल्कुल तमो प्रधान 22-5 की वाणी का प्रसार है, तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है, क्या रजो प्रधान में फिर भी सुख होता है, सतो सामान्य में भी सुख होता है, सतो प्रधान में तो सुख होता ही है लेकिन तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बहुत से बदलाते, अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो। बाप को ही आलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, मनुष्य समझते हैं गॉड आलमाइटी अथॉरिटी है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बाप आकर प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे क्या? बाप तो रचयिता है, कुदरत तो रचना है। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ऐसे ढेर पुरुष पूछते हैं, ऐसे इडियट लोग हैं। बाप समझाते हैं बंदर संपदाय हैं, तुमको तो बाप ताकत देते हैं, जिस ताकत से तुम रावण पर जीत पहनते हो, बंदर से भी तुम मंदिर लायक बन जाते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बनाई दिया। वास्तव में तुम सभी सीताएं हो, तुम सभी को रावण की जेल से छुड़ाता हूं। सभी रावण संप्रदाय है ना, रावण द्वारा कब तुमको शुभ नहीं मिल सकता है। इस समय सभी रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहा जाता है, कहा जाता है क्या है? राम की जेल में क्यों नहीं कहा जाता है? रावण की जेल में है ऐसे क्यों कहा जाता है? राम ने कभी किसी को बंधन में डाला ही नहीं। भारतीय परंपरा में संकल्प लिए तो खास कहते हैं, उनका नारा था स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। राम आते ही है रावण की जेल से, रावण पांच शीश वाला बनाते, उनको दस भुजाएं दिखाते, पांच शीश रावण के काम क्रोध लोग हैं का, फिर उनकी हो गई दो दो भुजाएं दस भुजाएं, फिर रावण के पांच स्त्री मुख भी दिखाते मंदोदरी के मुख आता, तो पांच तत्व जड़ तत्व पृथ्वी जड़ वायु अग्नि आकाश, उनके दस भुजाएं तो बीस भुजाएं दिखाते। अब बाप ने समझाया पांच स्त्री के मुख और पांच पुरुष के मुख हो गए, एक एक में पांच विकार है, उनको कहते ही रावण राजी वह पांच विकार रूपी माया का राजी। ऐसे नहीं कहेंगे, उनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ, बहुत धन को माया नहीं कहा जाता, उसको माया कहा जाता है। अरे पांच विकारों को माया कहा जाता है, धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि तो बहुत मिलती है, तो तुमको कोई माया थोड़ी मिलती है। इतनी संपत्ति मिलती है कि कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई से धन कमाते हो, पढ़ाई में फिर मांगना नहीं होता है। टीचर जो पढ़ा देंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, अब जितना भी पढ़ेंगे मांगने की बात, परंतु इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक एक अक्षर की वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पद्म, और वो कौन सा अक्षर है? वो अक्षर है बाप को पहचानो और बाप को याद करो। क्या कोई ऐसे ही कह दे ये बाप है तो नहीं मानना? बाप को बुद्धि से पहचानना है और पहचान करके फिर याद करना। बाप ने अपनी पहचान खुद दी, जैसे आत्मा बिंदी है मैं भी सुप्रीम आत्मा बिंदी हूं, और वो अवर पर पवित्र है, शांति का ज्ञान का पवित्रता का सागर है, तो हम एक की ही महिमा करते हैं। और सभी का पोजीशन भी अपना अपना अलग है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना इसको कहा जाता है, चौपट्टर आ जाए। ईश्वर थोड़े ही दुख को पुनः जन्म लेते हैं, न दुख लेते हैं न दुख देते हैं न पुनर्जन्म लेते हैं। कोई भी कहते हैं चौबीस अवतार लेते हैं, कच्छ अवतार मत्स्य अवतार वाराह अवतार परशुराम अवतार, अब ये तो सभी फालतू बात है। भगवान आकर कोई चौबीस जन्म नहीं लेते हैं, कितने लेते हैं? सिर्फ कल्प में एक ही जन्म लेते हैं, अभी तुम समझते हो शास्त्रों में क्या क्या बातें हैं। सर्वव्यापी मनुष्य संप्रदाय में, फिर जंगली जानवरों में, फिर पत्थर पित्तर चित्तर में, अब ऐसी ऐसी बातें मनुष्यों ने बैठ बनाई है, नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। अब जिन्होंने ये नाटक देखा होगा वो तो जानते होंगे, महावीर बच्चे जो हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम बल कहां भी जाओ, कहां भी जाओ बल 22 फुट में चले जाओ, सिर्फ साक्षी होकर के 22 फुट को देखो, बाप की याद रहना चाहिए। देखो क्या तमाशा करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो सभी को रावण ने चोरी किया, जो भी भक्त हैं सब की चोरी हुई। अभी तुम राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, रावण राज्य को खलास कर देते हो, रावण राज्य को खलास कर देते हो, राम राज्य की स्थापना करते हो, ये बेहद की बात है, हद की बात नहीं है। वो कहानी जो बनाई है, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको रावण राज्य से छुड़ाता हूं, तुम्हारी है शिव शक्ति से, और ये शिव आलमाइटी अथॉरिटी है, शिव से शक्ति लेने वाली शिव की सेना तुम हो। यहां फिर बंबई में आर्टिफिशियल शिव सेना निकाली है, अभी तुम्हारा नाम क्या रखे, उन्होंने तो अपनी सेना का नाम शिवसेना रख दिया, तुम्हारा नाम क्या रखे, तो तुम्हारा नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार तुम्हारे लिए। शिव के तो सभी संतान है, सारी वर्ल्ड की आत्माएं उनकी संतान है, और शिव से तुमको डायरेक्ट शक्ति मिलती है, तुम शिव से शक्ति लेने वाले हो, शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी बड़ी शक्ति मिल जाती है, जो आज आकर तो तुम सारे विश्व बता चुके, तुम्हारा यह योग बल की शक्ति है और उन्हों की है बाहुबल की शक्ति, किनों की है, वो जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि है उन्हों की है बाहुबल की शक्ति और तुम्हारी है योग बल की शक्ति। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, उनका तो बाहुबल है, चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखे जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ, कहते भी हैं पैराइड से इतने वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, परंतु वो पैराडाइज कैसे बना ये बोलने का तुम तो जानते हो, योग बल से पैराडाइज बने, तो वो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वो तो घरवार छोड़ करके विधवा बनाई देती है, बच्चों को आर्हन बनाए जाते हैं, वो कोई नई दुनिया में थोड़े जाते हैं, जंगल में चले जाते, उस समय तमो प्रधान होने के कारण जंगल में चले गए, सतो प्रधान थे तो जंगल में भी जाते थे, उनमें कशिश रहती थी, आज तो कोई कशिश नहीं, वो फॉलोअर जाकर उनको वहां उनको भोजन आदि पहुंचाते हैं तो कशिश होती है तो जाते हैं, पहाड़ों आदि पर बहुत जाकर रहते हैं, अभी कोई नहीं रह सकता, क्यों, अभी वो साधु संन्यासी पहाड़ों पर जंगलों में आके एकांत में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि अभी साहब तमोप्रधान बढ़ पड़े, ये तो तमोप्रधान बन गए, जब सतोप्रधान थे तो रह सकते थे, अभी तो तमोप्रधान होने के कारण सभी यहां ऐसे शहरों में आकर के घुस पड़े, अरे पहले सतो प्रधान होते हैं बाद में तमो प्रधान होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले सतो प्रधान न हो बाद में तमो प्रधान न हो, 22-5 अक्षर की वाणी का किस सकते ड्रामा अनुसार हरेक को अपना पार्ट मिला हुआ है, सतो प्रधान सबको सामान्य रजो और तमो पार्ट बजाते ही होते, इतनी छोटी डंडी में कितना पार्ट भरा हुआ है, इसको कहते हैं कुदरत, छोटी इतनी डंडी 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट बजाती है, अभी आत्मा तो तमो प्रधान हो गई, आयरन एज है हो गई, बाप तो एवर शक्तिवान बोलने नहीं दो, अभी तुम उससे शक्ति लेते हो। और ये भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेज हो मैं, और तो जिनको भावना बैठ जाती है उस भावना से देखते हैं कि भगवान हजार सूर्यों से तेज हो मैं, तो ऐसा वो देखने लग पड़ते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, आंख लाल लाल हो जाती है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं ये सब भक्तिमार्ग के संस्कार है, वो छोड़ दें, ये तो नॉलेज है, इसमें तो पढ़ना है, बाप बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाए गए हैं, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। भक्ति मार्ग के लिए बाप ने समझाया हियर वही, मनुष्य को तो पता ही नहीं है ये किसने कहा, क्या किसने कहा है? अरे भगवान बाप ने कहा, इन आंखों से इस दुनिया में जो भी देखते हो वो सब ईविल है, इन आंखों से देखते हुए देखने की प्रैक्टिस बंद कर दो, तीसरी आंख से जो देखते हो वो ही देखना है। क्या देखते हो तीसरी आंख से? आत्मा तीसरी आंख से दिखाई पड़ती है या इन आंखों से? तीसरी आंख से आत्मा दिखाई पड़ती है, परमात्मा बाप भी इन आंखों से तो देखने में आएगा नहीं, किसान से देखते हो, तीसरी आंख से परमात्मा बाप को भी देखते हो, नहीं तो देखने में थोड़ी आता है। मनुष्यों को तो इन बातों का पता ही नहीं है कि सब बातें किसी में आई, असल में बंदर का चित्र बना दे क्या, यह नहीं मिल, टाक नहीं मिल, सी नहीं मिल, पहले बंदर का चित्र बना दे बत्ती मार, और वो चित्र जापान से आती है, अभी तो मनुष्यों को बनाते हैं। बाबा ने फिर नलिनी बच्ची का चित्र बनाया, हियर नहीं मिल, टाक नहीं मिल, सी नहीं मिल, भक्ति मार्ग की बातें बिल्कुल नशन, भक्ति मार्ग का मनुष्य को नशा देखो कितना है, भक्ति का राज्य है ना, अधिकता ज्ञान का राज्य, तो फर्क हो गया भक्ति कल्प और ज्ञान कल्प। बच्चे समझते हैं बरोबर ज्ञान से सुख होता है, क्यों? ज्ञान से सुख होता है। रावण राज्य में है अज्ञान, भक्ति में है अज्ञान, तो क्या भक्ति मार्ग में कोई सुखी नहीं है? सुखी तो है लेकिन 100% सुखी कोई नहीं है। और ज्ञान, ज्ञान तो कहा ही जाता है सत्य को, अगर सत्य का पूरा ज्ञान हो जाए तो सत्य में ही चला जाए, भक्ति से सीधी नीचे उतर, हम पहले सत्य में जाते हैं फिर जो भी से नीचे उतरते रहते हैं। 1250 वर्ष में दो कलंक हो गए, चंद्रमा का भी मिसाल है, धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं चंद्रमा की रोशनी, और धीरे धीरे फिर 15 दिन में रोशनी घट जाती है, चंद्रमा को ग्रहण भी लगता है क्या? सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है? भक्ति मार्ग में जो कहते हैं सूर्य को, वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं कहते है, झूठी बात कहते हैं सच्ची बात कहते हैं, वास्तव में चंद्रमा को ग्रहण लगता है, सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर तो ग्रहण लगने का सवाल ही नहीं, उसके ऊपर परछाया पड़ ही नहीं सकती, चंद्रमा कौन है ज्ञान वाली? ब्रह्मा बाबा जो रचना है वो है चंद्रमा, रचना को ग्रहण लगता है, रचयिता बाप ज्ञान सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा की कलाएं कम हो जाती हैं, फिर सोलह कला संपूर्ण हो जाती है, तो अल्पकाल की बात है, तो बेहद की बात है। इस दुनिया में तुम सब हो चैतन्य सितारे, धरती के सितारे हो, और तुमको पालने वाले हैं चंद्रमा और सूर्य, और धरती पर तुम्हारी पालना होती है, धरती तुम्हारी माता है, तो ये बेहद की बातें हैं। इस समय सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, ऊंचते ऊंचे हो गए बृहस्पति की जैसा और नीचते नीचे है इसकी राहु की दशा। क्या दशा हुई, बृहस्पति कौन है और राहु कौन है कैसे पता चले? पता चले तब तो हम बचे रहे। कितने धर्म है? दस धर्म है। दस धर्मों के रचयिता भी दस है। नीच से नीचे धर्म है नास्तिक धर्म, धर्म है भी नहीं वास्तव अधर्म या धर्म, और ऊंचे तो ऊंचे धर्म है सूर्यवंश। तो सूर्यवंश का रचयिता हुआ वृक्षपति, सारे वृक्ष का बीज वो, उसकी बातों में जो आ जाए तो समझ लो बृहस्पति की दशा में आ गए, और नास्तिकों की बातों में आ गए तो जैसे राहु की दशा में। नीचे में नीचे है राहु की दशा, एकदम दीवाला मार देते वो बृहस्पति की दशा से विचरते, वो बेहद की बात को जानते नहीं है। अभी राहु की दशा तो सभी के ऊपर बरोबर है, जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा से इंसॉल्वेंट तुम बनते हो, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बन जाते हो। भारत कितना सॉल्वेंट, एक ही भारत था, सत्युग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, इसकी महिमा अपवित्र राज्य वाली गाते गाते हैं। मैं नरुआ हारे में कोई गुण नहीं, ऐसी संस्थाएं भी बनाते हैं निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, सारी दुनिया में कोई गुण नहीं रहा, एक ही बात थोड़ी है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो निर्गुण संस्था बालकों की। ये तो सारी दुनिया है जिसमें गुण नहीं है, राहु की दशा बैठी हुई है। अभी बात कहते हैं वेदानंद कृष्ण के ग्रह, ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या बोलते हैं, वेदांत सूर्य ग्रहण, तो किसको दान देना है? अरे ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर जो विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, उस विकारों के ग्रहण को हटाने के लिए क्या करना है? योग का दान देना है। तो उसके ऊपर से विकारों का ग्रहण हटेगा तो बुद्धि मलिन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा अभी क्या समझे बैठी है? गीता का भगवान कौन है? खुद अपन को गीता का भगवान समझे बैठी है, ग्रहण लगा हुआ है। अभी बाप कहते हैं देह के सभी धर्म को छोड़ अपन को आत्मनिश्चय करो, उनको अभी वापस जाना है, पवित्र न होने के कारण कोई वापस नहीं जा सकते हैं। बाप अभी पवित्र होने की युक्ति भी बताते हैं, वेद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं, बाप कहते हैं नीचे बच्चों पति से पावन बाप को भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? जरा विचार करो ये क्या कहते हो, जानवर भी कब ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं, तुम तो कैसे कह देते? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने, निराकार बाप साकार में आने तब तो पढ़ा लेना। अभी तुम जानते हो बाप ने किसी में प्रवेश किया है, जिन्हें में प्रवेश किया है वो तो दो है, बाप और दादा। बाप कौन है? राम वाली आत्मा बाप, और सच्ची का पहला पत्ता बड़ा भाई दादा। दोनों की आत्मा भृगुटी के बीच में बैठी है, और कहां होंगी? कहते हुए बाप दादा तो जरूर दो आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्माएं हैं ना। तुम सभी बड़े हो पचा पिता ब्रह्मा की कुमार कुमारी, तुमको नारी मिल रही, जानते हो हम भाई भाई फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते, ये याद पक्की होनी चाहिए। कभी बाबा देखते हैं बहन भाई से भी नाम नाम की कशिश हो जाती है तो बहुतों को विकल्प आते हैं। अच्छा शरीर देकर के विकल्प आते हैं ना। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई से, तो कुछ भी कोई विकल्प नहीं आता। स्त्री चोला कशिश करता है ना, उनका रूप भी ऐसा बना हुआ है। फीमेल को ब्यूटी की प्राइज मिलती है, मेल को ब्यूटी की प्राइज थोड़ी मिलती है, ऐसा कब सुना। स्त्री जाति कितना मोहित करती है। बाप कहते हैं तुम न स्त्री ले को न पुरुष ले को, अपन को आत्मा समझो, भाई भाई दे दो। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप तो जरूर चाहिए 22-65 अभी सभी का बाप एक है और सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सत्वप्रधान बनना है तो उसकी एक ही दवाई है क्या, मां में एकम याद करो और सबको भूल दे। जितना याद करेंगे उतनी तर्क करती जाएगी, उसी का पारा चढ़ता जाएगा, कशिश होती रहेगी। नंबर बार को सात अनुसार कशिश हो सभी का पीछे अलग अलग। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र है आत्मा भर सबकी एक जैसी है, परंतु फीचर सबके अलग अलग हो जाते हैं। इसे क्या साबित होता है, आत्मा सभी की बिंदी बिंदी और चेहरे सभी के अलग अलग, ऐसे क्यों हो जाता है। जैसे एक बोरा गेहूं हो, गेहूं खेत में बोया जाता है तो एक पौधे की शक्ल दूसरे पौधे से पूरी पूरी मिलेगी है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, हरेक बीज में अपने अपने संस्कार अलग अलग प्रकार के भरे हुए। ऐसे ही हर आत्मा में अपने अपने अलग अलग संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सबके पीछे सब फिर वही रिपीट होंगे अपने अपने समय। तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है, सभी एक्टर्स हैं, जन्म बाई जन्म फीचर्स अलग अलग होते जाते हैं। वो लोग कहते हैं अनेक दुनिया है, चंद्रमा में भी दुनिया है, आगे तो वहां भी जमीन खरीदने के लिए बोलते थे। अभी चंद्रमा में जमीन खरीदने की बात बंद कर दी। क्यों, क्योंकि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया और वहां कुछ भी कोई दुनिया नहीं है, समझते थे चंद्रमा में देवताएं रहते। वास्तव में मनुष्यों का अशुद्ध घमंड है, अशुद्ध घमंड वाले विनाश को प्राप्त होते हैं। तुम शुद्ध घमंड वाले बाप से वर्षा देते, आत्मा सेकंड में पार हो जाती है। आत्मा से तीखा और कोई नहीं होता, और आखिर भी आत्मा से ज्यादा तीखा नहीं होता। उन्होंने के विमान आए तो उस पार जा ही नहीं सकते, वो तो नुकसान ही कर देंगे। एक स्टार गिर जाए तो कितना नुकसान हो जाए, ये तुम आगे चलकर के देखेंगे। जो चीज जिद दृष्टि से देखी जाती है वो तो प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। देवताएं स्वर्ग में होते हैं, वहां ये ज्ञान नहीं है कि हमको फिर नर्क में जाना है, ये ज्ञान अभी तुमको है। वहां तो मालूम हो जाए तो बादशाही खुशी ही सारी चली जाए। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी दुख के बहुत टाइम, बहुत थोड़े दिन, बहुत थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत थोड़े दिन है। पिछाड़ी में थोड़ा समय दुखों के पहाड़ गिरते हैं, ज्यादा है दुनिया कैसी आने वाली है। दुखों के पहाड़ गिरेंगे परंतु बहुत लंबे समय तक ये सीन नहीं चलेगा। रक्त की नदियां बहती है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हुआ था ना 1947 में, खून की नदियां बहती है तो लंबे समय तक बहती है, थोड़े समय तक हाय हाय होती है, फिर भी ये हाय हाय होनी है, फिर जय जयकार होता है। नई दुनिया बनेगी तो पुरानी दुनिया वाले हाय हाय करेंगे, पीछे फिर जय जयकार होगा। हाहाकार वाले कलयुग भी और जय जयकार वाले सतयुग भी होंगे। तो बच्चे अभी रचयिता और रचना के हाथ में व्यक्ति को जानते हो, ये भी समझते हो, दैवी होना चाहिए, खान पान की भी खबरदारी चाहिए। कहा जाता है सिगरेट छोड़ो, तो कहते हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा होता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता और उसको मना कर दिया जाए, चाय मत पियो, बीड़ी मत पियो, तो बीमार हो जाए, हो जाते हैं। जब उनके सर में दर्द होने लगता है तो उनको कहा जाए अच्छा चलो चाय पी लो, एक बार पी लो फिर मत पीना। फिर कहा जाता है इनकी तकदीर नहीं है, ऐसा बाप इसमें क्या करेंगे, बाप पीछे सभी को तकदीर जैसी बताते हैं। फिर जिसकी जो तकदीर, बाप तो सभी को समझाते हैं, फिर है कि अपनी तकदीर कल पहले जिसकी तकदीर में होगा उन्हीं की तकदीर बनी होगी। ये सभी समझने की बातें हैं, जिसको जो सर्विस व धंधा आदि है वो भन करे, बाप मना नहीं करते। क्या कोई भी धंधा जिसका है वो अपना धंधा करे, बाप मना नहीं करते। अच्छा किसी का शराब का धंधा है तो करे, एक शराब का धंधा करने के लिए मना किया, बाकी और कोई धंधा करने के लिए मना, कोई मछली भी बेचता हो तो कोई हर्जा नहीं, या अंडे बेचता हो तो भी कोई हर्जा नहीं, अपना धंधा भल करो परंतु बाप को याद। भक्ति मार्ग में तो देखो अनेकों को याद करते, जो आया उनको याद करते। अभी बाप कहते हैं एक को याद करो जो निकल में नाश हो गए, शरीर को याद नहीं करो वो तो भूत पूजा हो जाती है। भूत की याद आती है ना, पांच तत्वों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा, मछलियों की पूजा, चींटियों की पूजा, चींटियां खिलाते हैं ना, कहेंगे इन चींटियों को भी दो तो हमारी अच्छी पालना होगी, उनकी आशीर्वाद हमको मिल जाती है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की रास्ते बताते हैं, बाप को आते हैं यहाँ इस दुनिया रथ पर सवार होकर आते हैं, ये रथ है ना, इन्होंने फिर घोड़ेगाड़ी का रथ बना दिया, कम से कम बाबा को मोटर तो होनी चाहिए। क्या ये बहुत ही समझने की बात है, सिवाय बाप के और कोई क्वालिफिकेशन बदल नहीं सकता है। वो तो अपन को असुरी नहीं समझते हैं तो देवता बनने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम पूज्य देवता थे तो बड़े लायक, एम ऑब्जेक्ट के चित्र नहीं है, यही चित्र एम ऑब्जेक्ट के, कहा जाता है लक्ष्मी नारायण ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं जिसको एम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं। ये भी बच्चों को समझाया है, तुम पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों से भी मुस्कुरा तो पा सकते हो, या बहुत ब्राह्मणियां ऐसी हैं जो सत्संग में जाके टीचर बनेगी लेकिन राजा राजा नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां पढ़ाई तो बहुत अच्छी पढ़ाती है लेकिन चरण चलन बहुत नीचे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में हार्ट फेल मत हो जाओ, ऐसे मत समझो हम देरी से आए हैं, हम टीचर से आगे कैसे जाएंगे। बाप कहते हैं टीचर से भी तुम ऊंचे पद पा सकते हो, तुम भी टीचर बन सकते हो। अच्छा अभी बन गए कि नहीं टीचर एडवांस में आगे, जो बेसिक में टीचर थे उन बेसिक वालों को पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, हम नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते। अगर वो सुनना चाहें तो उनको बता सकते कि नहीं बता सकते। तो देखो टीचर स्टूडेंट हो गए और स्टूडेंट टीचर हो गए, तो तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या बोलना होगी तो बोलना।